नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्ये सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 20 से चालू करें। इत्यच्युतेनाभिहितं व्रजाबला मत्वा विवस्त्राप्लवनं व्रतच्युतिं तत्पूर्तिकामास्तदशेषकर्मणां साक्षात् कृतं नेमुरवाद्य मृगयतः। तास्तथा वनता दृष्ट्वा भगवान् देवकी सुतः वांसांसि ताभ्य प्रायच्छत् करुणास्तेन तोषितः दृढं प्रलब्धास्त्रपया च हापितः प्रस्तोभितः क्रीडनवच्चकारितः वस्त्राणि चैवापहृतान्यथाप्यमुम् तानाभ्यसूयन् प्रियसङ्गनिर्वृतः परिधाय स्ववासांसि पृष्ठसङ्गमसज्जितः गृहीत चित्तः नो चेलुः तस्मिन् लज्जा इति क्षणः तासां विज्ञाय भगवान् स्वपादस्पर्शकाम्यया धृतव्रतानां संकल्पम् आह दामोदरो बलः संकल्पो विदितः साध्यो भवति नाम मदर्शनम् मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धानः प्रायो बीजाय नेशते। जाता बला व्रजं सिद्धः मयेमारंस्यथ क्षपा जदुदिश्य व्रतमिमं चेरुरार्यार्चनं सतिः। श्रीशुक उवाच
इत्यादिष्टा भगवता
श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामः कुमारिकः ध्यायन्तस्तत्पदाम्भोजम् कृच्छ्रा निर्विविशुर्व्रजम्। सीधा हम अर्थ चालू करते हैं। इत्यच्युतेनाभिहितं व्रजाबला मत्वा विवस्त्रा प्लवनं व्रतच्युतिं तत्पूर्तिकामास्तदशेषकर्मणां साक्षात् कृतं ने मुरवाद्य मृगयतः। ब्रजाबलः इति दोषत्वेन अच्युतेन अभिहितं कथितं विवस्त्राप्लवनं विवसन स्नानं व्रतच्युतिं व्रतस्य च्युति हेतुं मत्वा तत्पूर्तिकामः तस्य व्रतस्य पूर्तिकामः ताः तस्य तदशेषकर्मणां तासाम् अन्येषाम् अशेषकर्मणां च साक्षात्कृतं साक्षात् साध्यफलस्वरूपं साक्षात्कर्तारं तं नेमुः। यतः अच्युताद् एव अवध्यमार्जनाय नियता अवध्यमृक सर्वदोष निवृत्ति भवति। अपने पास बैठे बच्चों को शांत रखना चाहिए। अच्युतेना इति कदाचित् कथञ्चित् अपि कथञ्चिदपि तद्वाक्यस्य सदर्थाच्युति नास्ति इति तासाम अभिप्राय। भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहते हैं। तो श्रील सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं, तो भगवान के वाक्य को सुनकर जब श्री गोपियों ने एक मन से भगवान को समर्पण किया और श्री कृष्ण के कहने पर जब वे हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़ करके अपने सिर पर रखे, ऐसे मूर्धनि सिर पर अंजलि बांध कर रखे और समस्त कर्मों के फल स्वरूप श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया, क्योंकि श्री कृष्ण को प्रणाम करने से या उनका नाम लेने से किसी भी प्रकार से संपर्क में आने पर श्री कृष्ण सबके सब प्रकार के दोषों का हरण कर लेते हैं, मार्जन कर लेते हैं। अवध्य मृग, अवध्य का अर्थ है दोष, असामंजस्य, अपराध, गलती, और मृग, मृग का अर्थ मार्जन करने वाला। श्री गोप कुमारियां यह जानती थी, बड़े बड़े लोगों के प्रवचन में सुनी थी श्री कृष्ण के विषय में, जैसे गर्गाचार्य जी के या और भांगुरी मुनि के विशेष करके, और श्री कृष्ण के अद्भुत विचित्र लीलाओं को भी उन्होंने देखा था। तो श्री कृष्ण के प्रति उनका भाव यह था कि ये साक्षात ईश्वर हैं, ये साक्षात भगवान हैं। ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण की महिमा से वे अनभिज्ञ थी, गोपी गीत में या अन्य गीतों के अवसर पर जब श्री कृष्ण के विषय में बोली है तो इसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान उनको था। नखल गोपिका नंदन भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म विखन सार्थी तो विश्व गुप्त सख देवान सात्वताम कुले। गोपियों ने कहा है आपस में भगवान कृष्ण से कहती हैं कि आप केवल जसोदा नंदन ही नहीं हैं, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं, साक्षी हैं, अंतर्जामी हैं, और हमको पता है कि इस विश्व के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप अवतार लिए हैं, अपने धाम से इस प्राकृत जगत में आए हैं। विखन सार्थ तो विश्व गुप्त है, विश्व गुप्त है, विश्व की रक्षा के लिए पालन के लिए आप अवतार लिए हैं। इस प्रकार के अनेक वाक्य हैं जिनके द्वारा यह सूचित होता है कि श्री गोपियों को भगवान की महिमा का पूर्ण ज्ञान था। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इन्हीं के भावों का अनुवाद कर रहे हैं कि जब अच्युत ने गोप कुमारियों से कहा कि तुम्हारे द्वारा एक अपराध हुआ है, कात्यायनी देवी की श्री दुर्गा जी की पूजा करने में तुम लोगों ने जो नग्न स्नान किया है तो यह नग्न स्नान तुम्हारे व्रत में एक च्युति है, व्रत के फल को प्राप्त करने में यह बाधक होगा, नग्न स्नान एक दोष है, अतः तुम लोग इस अपराध का मार्जन करने के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ करके और प्रणाम करो, नम्र प्रणाम करो। श्रील सुखदेव जी यहां पर कहते हैं कि इस प्रकार जब अच्युत ने कहा ब्रज अबलाओं से तो उन लोगों ने ऐसा ही किया, जैसा श्री कृष्ण ने कहा वैसा किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। परंतु प्रणाम में श्री गोप कुमारियों ने वरुण देवता को या माता दुर्गा जी को और किसी को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम किया स्वयं श्री कृष्ण को ही। वे कदम के वृक्ष पर बैठे थे और उन्हीं को प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी कहते क्यों कृष्ण को प्रणाम किया, क्योंकि वे जानती थी कि कृष्ण को प्रणाम करने से सभी अपराधों का मार्जन हो जाता है। एक श्लोक में कहा गया है कि जैसे पर्वतों से निकलकर सभी नदियां अंततः समुद्र में मिलती हैं, समुद्र की ओर जाती हैं, इसी तरह से किसी भी देवता को आप प्रणाम कीजिए या किसी भी व्यक्ति को, ये सारे प्रणाम अंततः जनार्दन को चले जाते हैं। प्रणाम के योग्य वास्तव में वही हैं। एक प्रकार से विचार किया जाए, खुले शब्दों में कहा जाए तो प्रणाम के योग्य कोई नहीं है, केवल भगवान है। और गीता में वे कहते हैं कि माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। उस समय भगवान श्री कृष्ण शेयर नहीं देते हैं किसी को कि और को प्रणाम करो, और को करो, मुझे प्रणाम करो। तो श्री कृष्ण को किया गया प्रणाम सबको प्रति प्रणाम हो जाता है। मनुष्य से जान में अनजान में सब प्रकार के अपराध, गलती, दोष ये सब होते ही रहते हैं। कोई व्यक्ति यदि चाहता है कि हमारे जीवन में शुद्धि हो तो उसे भगवान कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम से सब दोष का मार्जन हो जाता है। अपने व्रत में गोप कुमारी ने सोचा कि त्रुटि है, जैसा श्याम सुंदर कह रहे हैं, ऐसी त्रुटि को कभी सह नहीं पाते थे। त्रुटि का अर्थ था कि श्री कृष्ण पति रूप में उनको नहीं मिलते यदि व्रत में त्रुटि रह जाती, तो इस बात की कल्पना से ही मैं कांप गई। और इस बात को कौन कह रहा था, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे थे कि तुम्हें व्रत का फल नहीं मिल पाएगा यदि इस दोष का मार्जन नहीं हुआ। इतना सुन करके गोप कुमारियों ने भगवान को प्रणाम किया तो श्री कृष्ण का एक नाम है अच्युत। अच्युत यहां पर अच्युत का अर्थ है कि जिनका बोला हुआ वाक्य सदर्थ से कभी च्युत नहीं हो सकता है, जो कहते हैं बिल्कुल सत्य है। जैसे भगवान ने गीता का उपदेश किया है, इसलिए उसे भगवत गीता कहते हैं, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, दिया हुआ ज्ञान, तो यह भगवत गीता परम प्रमाण है। जो भगवान ने कहा है सभी देश काल में बिल्कुल सत्य है, सभी मानते हैं। संसार के जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं आज तक हैं, वे सब भगवत गीता को मानते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे एक जगह, हैदराबाद की बात है, प्रवचन कर रहे, प्रवचन करते समय अपने बातों का अनुमोदन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वे गीता के श्लोक बोल रहे थे। तो एक व्यक्ति कथा के बाद, प्रवचन के बाद खड़ा होकर के पूछा, आप बार बार गीता से क्या उदाहरण दे रहे हैं? इंग्लिश में पूछ रहा था, प्रभुपाद जी इंग्लिश में ही प्रवचन किए थे, आप गीता से क्यों इतना उदाहरण देते हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, तो तुम्हारा क्या विचार है किससे उदाहरण दे, न्यूज़पेपर से? ऐसे भी कहे, न्यूज़पेपर से उदाहरण दूं? तो वो बहस किया, तो भगवत गीता ही परम प्रमाण है, भगवत गीता ही प्रमाण है, एविडेंस है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ सबके द्वारा माना हुआ यह प्रमाण है, सभी मानते हैं। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने माना है, आदि शंकराचार्य ने, और संसार के जितने भी बड़े से बड़े मूर्धन्य विद्वान हुए हैं सबने भगवत गीता को माना। श्रीपाद शंकराचार्य की टीका भी है, तो उन्होंने कहा कि इसको श्रीपाद शंकराचार्य मानते हैं, विष्णु स्वामी मानते हैं, निम्बार्काचार्य मानते हैं, मध्वाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं सब मानते हैं। तो उसके मुख से निकल गया, मैं नहीं मानता। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, वाई क्यों, क्यों नहीं मानते हो, क्यों, क्या कमी है इसमें, किसी श्लोक में कुम तुम दिखाओ कि जो कृष्ण कहते हैं वो यथार्थ नहीं है, उसमें कोई दोष है, कमी है, कोई श्लोक उद्धृत करो, क्यों नहीं मानते हो। तो उसने कह दिया कि आई कैनॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली। वो भी बोला, मैं ब्लाइंडली स्वीकार नहीं कर सकता हूं भगवद गीता को। तो प्रभुपाद जी कहते, बट यू कैनॉट रिजेक्ट ऑल्सो ब्लाइंडली, ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हो, वाले आंख खोलो, पढ़ो भगवद गीता को, इसके बाद कहो कि इसमें क्या कमी है, मानते हो या नहीं मानते हो। बिना पढ़े तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं मानते, अंधे कहेंगे। अंत में वो शांत हो गया है, ब्लाइंडली स्वीकार नहीं करते, तो ब्लाइंडली रिजेक्ट क्यों करोगे, ये तो उल्लू का काम है ना, या जन्म से ही जो अंधा है, वो अंधा व्यक्ति कहे कि मैं सूरज को नहीं मानता, तो तुम्हारे नहीं मानने से क्या हुआ है? अगर अंधा आदमी कहे कि हम सूरज को नहीं मानते हैं, तो क्या उसकी मान्यता छपेगी क्या दुनिया में कि इसका ये मंतव्य है, इसकी आइडिया है, सूरज को नहीं मान रहा है? हो सकता है दूसरे उल्लू भी उसमें सहारा दे दे, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे कैसे मान लिया, कैसे मान ले कि कृष्ण भगवान है, कैसे नहीं मानोगे, जब सबसे बड़े बड़े लोग मानते हैं तो तुम मानोगे क्यों नहीं, और नहीं मानोगे तुम्हारी बात की कीमत क्या है। सारे उल्लू एक दिन कॉन्फ्रेंस करने लगे, उल्लू मिल करके, और मान लीजिए रिसोल्यूशन पास कर दें, हम सूरज को नहीं मानते हैं, और जो लोग सूरज के भक्त हैं, सूरज को जल देते हैं, उनकी हंसी उड़ाए, आ देखो क्या पाखंड है, सूरज है ही नहीं है, लोग सूरज को जल देते हैं। मान लीजिए कोई कहे तो उल्लुओं की मान्यता का कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवद गीता नहीं पढ़ा है और पढ़ करके भी समझा नहीं है, उसकी उक्ति का, उसके मंतव्य का कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण है अच्युत, बिल्कुल देखी हुई बात कहते हैं, उनका अनुभव है अनादि काल से अनंत काल तक कौन स्थिति कैसे है, कैसे जगत की सृष्टि हुई, सृष्टिकर्ता कौन है। भगवान स्वयं ही कहते हैं कि मैं सबको जन्म देने वाला, सभी भूतों की उत्पत्ति, सभी जीवों की जो उत्पत्ति हुई है मुझसे हुई है। अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रद पिता हूं, मैं सबका पिता हूं। भगवान खुलम खुला गीता में कहते हैं, इसको अर्जुन ने माना, सारे ऋषियों ने माना है, भगवान वेदव्यास देव, असित, देवल, श्री नारद जी, ये सभी मानते हैं। अर्जुन कहते हैं सर्वम एतद ऋतम मन्ने जन्मम वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवानदानवा। हे श्री कृष्ण, आप जो कुछ भी कहते हैं मैं सत्य मानता हूं, क्योंकि ऐसी ही बात सारे ऋषि लोग कहते हैं। आहुस्ताम ऋषि सर्वे देवर्षि नारदस तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, सब लोग कहते हैं। तो अर्जुन ने स्वीकार करें सारे ऋषि मुनि ऐसी बात कहते हैं, और राजसीय सभा में सब आए भी थे और भगवान वहीं बैठे थे हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में उसी सभा में, और भगवान को दिखा दिखा कर श्री नारद जी कहते हैं यूयम त्रिलोके बत भूरी भागा लोकम पुनाना मुनयो भियंती जासाम गृहाना वसती ति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम अहो युधिष्ठिर। इस तीनों जगत में तुम लोग सबसे अधिक भाग्यशाली हो जिनके घर में ममेरा भाई के रूप में श्री कृष्ण निवास करते हैं। ये साक्षात परब्रह्म है, जगदीश्वर है, परमात्मा है, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। तुम लोग इस लोक में सबसे भाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म एक संबंध में बंध करके निवास कर रहे हैं। ये राजसूय सभा में सामने भगवान को दिखा करके बात हो रही, और उस राजसूय सभा में विश्व के सर्वश्रेष्ठ महात्मा जन, राजर्षि जन, ये सब जुटे हुए थे। बहुत महती सभा थी वो, महान सभा, जिस सभा में साक्षात भगवान की अग्र पूजा हो और बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां प्रवचन करें जैसे नारद जी आदि, तो महान सभा है। उस महान सभा ने श्री कृष्ण को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा उनके प्रकट लीला काल में ही छाई हुई थी, सब लोग जानते थे कि ये भगवान है, सर्वत्र बात फैली थी। भगवान श्री राम आदि की महिमा को लोग नहीं जान पाते थे, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के अंदर रहे, एक मनुष्य की लीला में प्रस्तुत कर रहे थे, मनुष्य का कर्म कर रहे थे। थे तो भगवान, भगवान तो भगवान ही है, उन्होंने समुद्र बंधन किया, सेतु बांधा, तो इसे पता चल गया ना कि ये तो साक्षात भगवान है। रावण का वध किया और सब किया, उन लीलाओं से प्रकट होता था कि ये साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात भगवान हैं। परंतु फिर भी श्री भगवान रामचंद्र मर्यादा का पालन करते थे, इसीलिए लोगों के मन में भ्रम हो जाता था कि ये लगता है भगवान नहीं। और तो और शिव जी की पत्नी को मिसअंडरस्टैंडिंग, भूल हो गई उनको, शिव जी के साथ जा रही थी कथा सुन करके मलय पर्वत से, उसमें अवतार हुआ था, भगवान के ही प्लान से सीता का हरण हो गया था, और श्री भगवान वृक्षों से, पत्थरों से, पहाड़ों से, नदियों से, मृगों से, भ्रमरों से, इन सब से पूछते जा रहे थे सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, रो रहे थे, नरलीला कर रहे थे, भगवान रो रहे थे, रो रो करके वृक्ष से पूछ रहे थे कि हमारी प्रिया कहाँ गई। ये तो महापागल का काम है ना, पेड़ से पूछ रहे थे, वृक्ष से, भंवरों से, पक्षियों से, गोदावरी नदी से पूछते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया हे माँ गोदावरी, कभी कभी सीता तुम में स्नान करने के लिए आती थी मेरे साथ, तुम में ये कमल जो खिले रहते थे आज मुरझा गए हैं, लगता है तुम भी सीता के विरह में हो, और तुम्हारे भीतर खिलने वाले कमल के समान सुंदर उसका मुख है। तो क्या तुमको पता है सीता कहाँ गई है? नदी को प्रणाम करके पूछ रहे हैं भगवान, वृक्ष से पूछते हैं, अखबार में भर करके अशोक आदि वृक्ष को पूछते हैं कि तुमने सीता को देखा है। और हवा जब चलती है और वृक्षों के शिखर हिलते हैं ऐसे, तो भगवान मान लेते हैं कि ये कह रहा है कि नहीं हमको पता नहीं। इन सब लीलाओं को कोई देखेगा तो कैसे मानेगा कि ये सर्वज्ञ ईश्वर हैं, भगवान हैं। भगवान ऐसी लीला कर रहे थे। सती जी ने देखा, भगवान शिव ने देखा, तो भगवान शिव को तो पुलक हो गया देख करके प्रभु की लीला को, वो आनंद में मग्न हो गए और निकट नहीं गए, दूर से ही कहे जय सच्चिदानंद। भगवान की ये लीला है, कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। कामदेव के बैरी भगवान शिव जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करके और चले, निकट नहीं गए, क्योंकि रावण मरण मनुज कर बाचा, प्रभु विधि वचन की न चह साचा। भगवान शिव ने सोचा कि रावण ऐसा वर मांगा है ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से हो, तो प्रभु विधि वचन की न चह साचा। भगवान श्री राम ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते थे, इसलिए अपने को मनुष्य के रूप में ही दिखा रहे थे, हैं साक्षात ईश्वर, लेकिन लीला ऐसी कर रहे थे कि दुनिया ये समझे, रावण ये समझे कि ये मनुष्य है। और वास्तव में उसने सीता जी का हरण किया था टेस्ट के लिए, ये टेस्ट करे कि ये केवल एक क्षत्रिय है, राजा का लड़का है या भगवान है। यदि ये जान जाएगा, अगर ये भगवान होगा तो सीता के विरह में उसकी खोज नहीं करेगा, जान जाएगा कि हमने हरण किया। और यदि यह सचमुच के राजपूत ही होगा, क्षत्रिय होगा, तो इसके साथ में युद्ध करूंगा, इसकी स्त्री को ऐसे ही हर कर ले जाऊंगा, जैसे भी हो इसके साथ युद्ध करूंगा। तो टेस्ट करना चाहा वो मूर्ख रावण। तो भगवान तो पहले से प्लान कर लिए कि तुम पावक मह करहु निवासा जब लगी करहु निशाचर नाश, कि प्रिय सीते तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं राक्षसों को दुनिया से साफ नहीं कर देता। उनको राक्षसों का वध करना था, एक बहाना करके कि सीता का हरण किया इन लोगों ने। भगवान जो चाहते थे वही हुआ। रावण ये समझा कि ये मनुष्य है, सीता का हरण करके ले गया, और सीता के विरह में भगवान रोए। जो भी हुआ, भगवान अपने को स्वयं ही चाहते थे कि लोग हमको मनुष्य समझें, विशेष करके रावण। इस बात को सत्य करना चाहते थे भगवान, तो भगवान की इच्छा के विपरीत शिव जी कैसे कर सकते थे? जो भगवान चाहते हैं कि हमको कोई भगवान न समझे, हमको मनुष्य के रूप में प्रचार हो कि मनुष्य है, तो भगवान शिव नहीं गए निकट, क्योंकि शिव जी अगर चले गए होते भगवान राम के पास, तो उसी दिन दुनिया के सारे न्यूज़पेपर और टीवी में दिखाया जाता कि ये भगवान है, क्योंकि शिव जी दर्शन करने गए थे, है ना? बात फैल जाती उसी दिन कि शिव जी जो विश्वनाथ हैं, विश्व के ईश्वर हैं, वे जब दर्शन करने गए हैं तो ये मनुष्य कैसे हो सकता है? क्या शिव जी किसी मनुष्य का दर्शन करने जाएंगे? निश्चित भगवान विष्णु है, परब्रह्म है। ये सोच करके भगवान शिव निकट नहीं गए, चले जा रहे थे। भगवान के इस दिव्य लीला और छवि को देख करके उनको पुलक हो रहा था, वाणी गदगद हो रही थी, जब राम राम बोल रहे थे तो गला गदगद हो रहा था। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकित कृपा निकेता। कृपा के समुद्र श्री शिव जी पुलकित हो रहे थे, और सती जी बार बार शिव जी की इस दुर्दशा को देख रहे थे। उसके अपने समझ से शिव जी पागल हो गए, क्या हो गया, माथा खराब हो गया, या आज राजकुमार को नमस्कार कर रहे हैं। जो अपनी पत्नी के विरह में ऐसे व्याकुल पूछ रहा है, घूम रहा है, उसको प्रणाम करना, शिव जी के दिमाग में क्या हो गया। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब ना वही शीशा। मन ही मन सोच रही है, कह नहीं रही है, शंकर जी जगत बंद हैं, जगत के ईश्वर हैं। तेहि नृप सुत ही किन्न प्रणाम, कही सच्चिदानंद परधाम। वैसे उस लड़के को परम धाम और सच्चिदानंद घन कह करके और प्रणाम कर रहे हैं। हाय भगवान, हमारे भाग्य में क्या है, हमारे पति का इतना दिमाग खराब कैसे हो। देखिए, दिमाग उनका खराब था, भगवान की लीला से बेचारी भ्रम में पड़ गई थी। लेकिन वे भगवान शिव पर आरोप कर रही थी। किसी के चेहरे से पता चल जाता है कि उसके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है। भगवान शिव तो राम राम उच्चारण कर रहे थे, भगवान की लीला को देखकर आनंद में थे, पुलकित थे, आंखों में आंसू था, आनंद के आंसू थे। तो सती जी के चेहरे पर भगवान ने देखा तो वो समझ गए कि ये तो बिल्कुल शंका में है। तो भगवान शिव कहते हैं अद्भुत भाषा में, सुनहु सती तव नारी सुभाव, संशय असन धरिए उरका। तो भगवान ने कहा, सती मैं जानता हूं तुम स्त्री हो, अतः तुम्हारा स्त्री का स्वभाव रहेगा। ठीक है, तुम्हें जो भी अज्ञान हो भगवान राम के विषय में, जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा संशय नहीं करना चाहिए तुमको, ऐसा संशय नहीं करना चाहिए। कैसे जान गए? वो तो जान के सर्वज्ञ ईश्वर तुरंत जान गए मूड से। ऐसा संशय मत करो। अभी अभी कुंभज ऋषि ने, अगस्त जी ने जो हमको कथा सुनाई जिनकी, और हमने भक्ति रस का वर्णन किया, वही हमारे इष्ट देव हैं, श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए हैं और लीला कर रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, इनको मैं प्रणाम किया हूं। तुम इस प्रकार के दुर्भिसंधि, इस प्रकार की कुशंका मत करो कि मैंने मनुष्य को प्रणाम किया, ये किया होगा। बार बार समझा रहे थे और रास्ते में चले जा रहे थे, नंदीश्वर जिस पर चढ़े हुए दोनों जा रहे थे। कितना भी भगवान शिव समझा रहे थे, उपदेश काम नहीं कर रहा था। लागन उर उपदेश जदपि कहेउ शिव बार बहु। भगवान शिव बार बार कह रहे थे, कई प्रकार से समझा रहे थे कि ये साक्षात ईश्वर है, भगवान है, भगवान है, लेकिन लागन उर उपदेश जदपि कहेउ शिव बार बहु। और बोले बिहंस महेश हरि माया बल जान जी। भगवान की माया का ऐसा प्रचंड प्रभाव देख करके सती पर हंस करके बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तौ किन जाई परीक्षा ले। यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो कि ये मनुष्य है कि भगवान है। तो सती जी तैयार हो गई, और तैयार होकर कहते हैं, लेकिन आप तो चले जाएंगे दूर में परीक्षा लेने में, पीछे पड़ जाऊंगे, छूट जाऊंगे। तो भगवान शिव ने संकेत किया, नहीं नहीं मैं यही, ये देख रहे हो ना बरगद का वृक्ष, तब लग बैठी अहूं बट छाही, जब लग तुम आई हूं मैं वहीं पाही। जब तक मेरे पास तुम आ जाओगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, इसको पहचान लो, लोकेशन देख लो ठीक से, भूलना मत जंगल में यहां मैं बैठा हूं, और अस कही लगे जपन हरिनामा। इतना कह करके भगवान शिव जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान शिव ने देख लिया कि इस विषय में भगवान राम का कोई स्पेशल प्लान है, अतः वो मन में सोच रहे थे होई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे सर, मैं क्या तर्क बढ़ाऊं और ये करूं, बार बार तर्क कर रही है। अपनी पत्नी साक्षात भगवान की पत्नी और वो तर्क कर रही है, और भगवान भी हार गए समझाते समझाते, शिव जी भी हार गए, और जाओ जाओ परीक्षा ले लो कौन तर्क करे विकार, बात कौन बढ़ाए। इस तरह से कई लोग कुसंकालु होते हैं, राम के विषय में बिना मतलब के बोला करते हैं, जानकारी कुछ है नहीं। वैसे जैसे मान लीजिए कोई बिच्छू का भी मंत्र नहीं जानता और सांप के बिल में हाथ लगाता, ऐसे हठीले या ऐसे दुर्बुद्धि लोग होते हैं, भगवान राम के विषय में कुछ जाने नहीं, तुरंत कह देते हैं अरे वो दशरथ का लड़का वो भगवान नहीं है, वो राम नहीं है, दूसरा राम है, वो घट घट बासी यह वह, इस तरह की बात करते हैं। घट घट वासी वही राम है, दशरथ जी के पुत्र ही, वही परब्रह्म है, वही सबके भीतर है, सबके हृदय में भी है, अपने धाम में साकेत में भी है, अयोध्या में, सब जगह। इस बात को भगवान शिव जानते हैं, बड़े बड़े लोग जानते हैं, और मूर्ख लोग तो बस घट घट वासी, घट घट वासी कह करके टाल देते हैं, कुछ ज्ञान तो है नहीं, जहां तहां अपनी मूर्खता जाहिर करते रहते हैं। तो भगवान शिव ने तर्क बंद कर दिया। जब सती जी को भी नहीं समझाया जा सकता है तो भी आज कल के पोंगे लोगों को क्या समझाया जाएगा बताइए, जो कोई भाषा भी नहीं समझते हैं, शास्त्र के वाक्य भी नहीं समझते हैं, कुछ नहीं। तो सती जी गई, ये भी नहीं पूछा कि परीक्षा का प्रकार क्या होना चाहिए आप बताइए, अपने आप वो सोच ली कि जिस सीता के विरह में ये लड़का रो रहा है तो उसी सीता का रूप बना करके मैं रास्ते में मिलूंगी तो अपने आप पोल खुल जाएगा, वो हमको देखते ही कहेगा आ मेरी प्रिय सीते, मैं तुमको बहुत देर से खोज रहा था, मिल गई, बहुत बड़ा भाग, ये कहां चली गई थी। वो तो सती जी ये सोच रही थी, तो सती जी सीता बन गई, मेकअप कर लिया तुरंत, वो तो वैसे ही सुंदरी है ही, तो तुरंत मेकअप कर लिए सीता जी के रूप में मेकअप कर ली, अपने को सजा ली। वो नहीं जानती थी कि अनंत ज्ञान के अथाह समुद्र हैं श्री राम, सर्वज्ञ हैं, भूतकाल वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय में है, रियल वही घट घट वासी है ये बात है। तो गई, खूब गुमान में सोती थी कि ये लड़का निश्चित गुमराह होगा, इतना रो रहा है अपनी प्रिया के लिए, तो प्रिया का वेश देखकर, सीता का वेश देखकर तो ये समझ जाएगा कि यही सीता है। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेही जही आवत सुरभूप। जिस रास्ते से भगवान श्री राम सीता को खोजते हुए आ रहे थे, झाड़ी में, जंगल में, कंदरा में, इधर उधर लक्ष्मण जी समझाते थे उनको, उसी रास्ते पर सीता का वेश बना करके सती जी आने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए, लक्ष्मण जी समझ गए कि ये तो सती जी हैं, आज सीता बनकर आ रही है, ये तो माता जगदम्बा कात्यायनी है, दुर्गा जी हैं, जो कि ये आज शिव जी की पत्नी है, सीता बनकर के आ रही हैं। लेकिन कहे न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा, लक्ष्मण जी भगवान का प्रभाव जानते थे, उन्होंने सोचा इनको जो करना होगा करेंगे, हम क्यों बोलें। वो कहे भी नहीं कि ये सीता है, ये सती है, नहीं तो कोई आदमी चकित होकर कहता ना कि अरे ये पार्वती जी सीता बनकर क्यों आ रही है। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, भगवान का प्रभाव जानते थे, ये जो करेंगे उचित करेंगे, हम क्यों इनको कहें सिखाएं। और भगवान श्री राम आगे थे ही, आगे होकर के भगवान श्री राम ने प्रणाम किया, हे जगदम्बे, हे जगत जननी, आपको नमस्कार है। मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूं, मैं अयोध्या से आया हूं, आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। पितु समय तल्ली निज नाम, प्रणाम किया और पिता का नाम लिया। और एक और बेढंगा प्रश्न कर दिए भगवान, पूछे बहुरी कहां वृष केतु, बीपी न अकेली फिरहू कही हेतु। ये प्रश्न तो और चकित कर दिया। मैं पूछा कि अरे भगवान शिव कहाँ हैं, भगवान शंकर कहाँ हैं, जब भी आप चलती हैं तो उनके साथ चलती हैं, आज अकेले कैसे जंगल घूमने लगे। विपिन अकेले फिर हूं कही है तो, इस विपिन में जंगल में अकेले कैसे घूम रही हैं। एक आश्चर्य की बात है, जो पत्नी अब हमेशा पति के साथ घूमी थी, आज अकेले वो भी जंगल में घूमे, तो सोचने की बात है ना। अब इतना सुनना था कि सती जी तो पूरा पूरा समझ गई कि ये कौन है। तो इसके बाद अब सुख में डूब गए कि हमने भगवान शिव का अपमान किया, उनकी बात नहीं माना, ये तो साक्षात परब्रह्म है, सर्वज्ञ ईश्वर है। अब वो क्या बतावे कि शिव जी कहाँ हैं और क्या हैं। कहा होगा कि प्रभु जी वहीं बैठे हैं बरगद के नीचे, कहा होगा जो भी है। और वो महामंत्र का जप कर रहे हैं। कह तो दिया या अवाक हो गई, भगवान श्री राम ऐसे फिर चल दी। तो तुरंत ही वो देखती है कि सीता जी का हरण हुआ ही नहीं है। सती जी देखते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता बीच में तीनों जा रहे हैं। जिधर देखती है उधर सीता, जिधर देखती है उधर सीता, सीता का हरण हुआ ही नहीं है। इस प्रकार से देखने लगी, अंत में आंख बंद करके बैठ गई, रास्ते में चक्कर आने लगा। चक्कर मतलब दूसरे प्रकार का चक्कर। बैठ गई, इसके बाद आंख खोली तो कोई नहीं था, वही भगवान रोते हुए सीता की खोज करते जा रहे थे। पहले तो उसने देखा कि सारे देवता राम की सेवा कर रहे हैं और कई दुर्गा सती आदि भी सीता की सेवा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, सब कुछ देखा, उनका ऐश्वर्य, उनका ईश्वर रूप। अंत में अब चली अपने पति के पास, पूरे रास्ते प्लान करती जा रही कि क्या कहूंगी, पूछेंगे कि क्या परीक्षा लिया तो क्या कहूंगी। तो भगवान शिव भी तो बड़े विनोदी हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। भगवान शिव हंस करके पूछे, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। भगवान बोले कि अच्छा, हंस करके बोले कि अच्छा परीक्षा की विधि क्या थी तुम्हारी, किस विधि से परीक्षा लिया, और दो शर्त लगा दिया कि पूरी बात बताओ और सत्य बताओ, कुछ छोड़ना निकालना मत, जोड़ना मत। सही सही बात बताओ कि किस तरह से परीक्षा लिया, कहूं सत्य सब बात। तो सती जी क्या कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, तुम जो कहा सुमृषा में हुई, कोई परीक्षा नहीं ली। असल में ऐसा हुआ ना, मैंने सोचा एक तो आप उपदेश कर रहे हैं, पति हैं आप, ईश्वर हैं, रास्ते में जा रही थी तो मेरा मन बदल गया। देखिए झूठ बोल रही, मेरा मन बदल गया, मैंने सोचा कि जब आप कह रहे हैं तो ईश्वर हैं ही, अतः मैं जा करके राम को प्रणाम किए। किन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, जैसे आप प्रणाम करते हैं ना या किए थे ना, वैसे मैं भी जाकर के प्रणाम की। और ये भी कह दे, आप जो कह रहे हैं वो मिथ्या नहीं है, सत्य है एकदम, वो भगवान है, परब्रह्म है, कोई परीक्षा नहीं ली। परीक्षा क्यों लूंगी, अरे उस समय तर्क कर रही थी लेकिन परीक्षा नहीं ली, आप जैसे प्रणाम किए थे ना वैसे ही की, आखिर मैं आपकी पत्नी हूं ना, तो क्यों परीक्षा ली। बाप देखिए, झूठ बोलने में स्त्रियों का नंबर आगे रहता है। हाँ, कोई परीक्षा नहीं ली, आप जो कहे बिल्कुल सत्य है, मैं आप जैसा प्रणाम की, प्रणाम जबकि राम किए थे, लेकिन कहती है कि मैं जाकर प्रणाम की। रास्ते में जा रही थी ना तो उसी समय हमारा चित बदल गया था। तुम जो कहा समृषा न होई, आप शिव सर्वज्ञ जान सबको, सभी लोग कहते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं, अतः आप जो कुछ कहते हैं वो झूठा हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव पूर्व के तार्किक स्वभाव को देखे थे, समझाए थे, तो उन्हें उसका नहीं, परीक्षा तो इसने जरूर लिया होगा। तब शंकर देखे उधरि ध्यान, सती जो कि नचरित सब जाए। तब भगवान शिव ध्यान करने लगे, ध्यान द्वारा अपने जोग बल से उन्होंने सारा देख लिया कि ये क्या क्या ड्रामा करके आई है, पूरा देख लिया। सती किन्ह सीता कर वेशा, सती ने सीता का वेश बनाया भगवान के सामने, ये बात सोच करके शिव जी का हृदय दुखी हो गया। उसी समय उन्होंने बोलना छोड़ दिया, जा रहे थे साथ में लेकिन अब कट ऑफ कर लिए कोई बोल। और फिर भगवान राम की माया को नमस्कार किया, जिस माया ने प्रेरित करके सती से भी झूठ बोलवा दिया, माया झूठ बोलो। बहुरी राम माया ही सिर नावा, सती ही प्रेर जही झूठ कहावा। भगवान की माया को प्रणाम करो, वह अद्भुत शक्ति। और जो महाईश्वर की पत्नी होकर के और झूठ बोल रही है, तो ये भगवान की माया का प्रभाव था इस तरह से। तो इस प्रकार मैं तो अच्युत शब्द पर बोल रहा था, तो ये सब कथा कहने लगा। मैं यह कह रहा था कि जब भगवान श्री राम की लीला पर सती जैसी स्त्री को मोह हो सकता है, फिर आजकल के अज्ञ लोगों को भगवान राम के विषय में पूरा भ्रम हो, इसमें क्या कहना है, इसमें कौन सी बड़ी बात। आजकल तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ना कथा होती है, न शास्त्र लोग पढ़ते हैं, न साधुओं का संग मिलता है, तो भगवान को क्या समझेंगे। रात दिन कथा में रहने वाली सती जी जब इतना भ्रम में पड़ गई, कथा सुनती थी, ये करती थी, फिर भी। परंतु श्री कृष्ण के विषय में, भगवान के विषय में जब वे प्रकट थे इस पृथ्वी पर, तो सारी दुनिया जानती थी कि ये साक्षात भगवान है, क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। भगवान कैसा होना चाहिए, भगवान की क्या क्या लीला है, स्वरूप है, इसको श्री कृष्ण प्रकट कर देते थे। कई लोग इनसे चैलेंज किए, जैसे दुर्योधन इनको बांधना चाहता था, संधिदूत बन करके गए थे, बांधने चला तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप प्रकट किया और कहने लगे, ठीक है आओ आओ बांधो, कहां शुरुआत है और कहां अंत है इसको देखोगे तब न बांधोगे। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, गत और अनागत काल देख, ये रश्मि रथी में दिनकर जी ने लिखा है। भगवान कहते हैं देखो मेरे पैर में सारा पाताल है, मुट्ठी में तीनों काल है, गत और अनागत, आने वाला काल और बीता हुआ, सारा विश्व हमारे भीतर है। वो लोग सब देखे और बेहोश होकर के गिर गए, क्या वो बांधेंगे भगवान। तो क्या इससे प्रचार दुनिया में नहीं होता था कि अरे श्री कृष्ण साक्षात भगवान, महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध इसीलिए हो गया कि श्री कृष्ण हथियार नहीं लेने की प्रतिज्ञा किए थे। अगर वे हथियार उठाते तो युद्ध होता ही नहीं, कौन मरने के लिए तैयार होता? क्यों, हम लोग जानते थे कि ये साक्षात भगवान है, अगर ये युद्ध करेंगे तो इनके सामने ठहरना कठिन है। तो जिसको जब क्या कहते हैं, गनीमत यही था कि श्री कृष्ण हथियार नहीं लिए थे, बिना हथियार के ही अपने मित्र की सहायता कर रहे थे या घोड़ा चला रहे थे, रथ हाँक रहे थे। इसीलिए आश्वासन था कौरव पक्ष को कि श्री कृष्ण नहीं मारेंगे किसी को। तो उनकी भगवत्ता सर्वविदित थी सब जगह, गोपी कुमारियों को भी ये बात, इस बात का पता था कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, महान। ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नग्न स्नान करके हम लोगों ने व्रत में कमी उत्पन्न किया है, अतः ये प्रभु हम लोगों को नहीं मिलेंगे, ऐसा मान करके उन लोगों ने श्री कृष्ण को ही प्रणाम किया। ये भगवान ने कहा कि देवता का अपराध हुआ है, जिस देवता का अपराध हुआ है उसको प्रणाम करना चाहिए ना, लेकिन गोप कुमारियां किसी को प्रणाम नहीं, श्री कृष्ण को ही प्रणाम की और उनके उस प्रणाम से भगवान प्रसन्न थे। तेन तोषित, अगले श्लोक में कहा गया तेन प्रणामेन तोषित। तो भगवान ने देखा कि गोप कुमारियां बिल्कुल विनीत भाव से हमारी बातों को मान करके और प्रणाम की, उस प्रणाम से भगवान संतुष्ट हो गए और उनको उनके वस्त्र दे दिए। अपने अपने वस्त्रों को पहनकर गोप कुमारियां वहीं खड़ी की खड़ी रह गई और वे, उनका चित्त पहले ही कहा जा चुका है कि घर में नहीं था, लोक में नहीं था, वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ जानती नहीं थी, किसी को मानती नहीं थी, तो वहीं खड़ी रह गई कि जिस व्रत की पूर्ति के लिए वे प्रणाम की थी कृष्ण को, वो श्री कृष्ण सामने हैं, उनको पति रूप में चाहती थी, माता दुर्गा जी से विनय की थी, बार बार एक महीने तक जप की थी और वही प्रभु सामने हैं, तो पति के रूप में मिल ही गए हैं और उनके महाप्रभाव के जानती थी कि श्री कृष्ण एक क्या ये अनंत स्त्रियों के स्वामी हैं, हो सकते हैं, क्योंकि भगवान हैं, सारा ऐश्वर्य सारा धन आदि सब इनके पास है, तो सबको रखना, सबकी सबको मेंटेन करना इनके लिए बिल्कुल आसान है, इस बात को जानती थी। तो वहां से वे अब सुसज्जित होकर के पत्नी के भाव से ही अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ ही रहना चाहती थी, वो जाना नहीं चाहती थी लोक में। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी यहां पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव के कारण कुछ असूया जैसा प्रकाशित करते हुए गोपी जनों के महान भाव का वर्णन कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में गोप कुमारियों ने भगवान श्याम सुंदर के प्रति दोष बुद्धि नहीं किया, इस बात को यहां कहते क्या क्या श्री कृष्ण ने किया फिर भी श्री कृष्ण के प्रति ये गलती किए, उनके प्रति दोष बुद्धि नहीं की बल्कि गुण बुद्धि ही की। इसको एक श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, दृढ़ प्रलब्धास्त्रपया चहा पिता प्रस्तोभिता क्रीडन वच्चकारितः वस्त्राणि चैवा पहृतान्यथाप्यमुं तानाभ्यसूयन् प्रियसंग निर्वृतः। प्रियसंग निर्वृतः, प्रियस्य तस्य संगेन संगत्या एव निर्वृतः, प्रियेण कृष्ण सह संकथन लक्षण संगेन। गोप कुमारियों को जीवन में अवसर मिला श्री कृष्ण के साथ बात करने का, तो श्री कृष्ण के पास होने से ही वो पूर्ण आनंद में मग्न थी, सुख में, प्रिय संग निर्वृता। गोप कुमारियों के लिए यही सबसे बड़ा आनंद था कि भगवान श्री कृष्ण साथ में हैं, उनके साथ संकथन लक्षण संग मिला, अर्थात उनके साथ आधा घंटा या 15 मिनट या 1 घंटा उनके साथ रहने को मिला, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद था। इस परम आनंद में थी, तो अपना सौभाग्य मानती थी कि ये आए जमुना जी के तट पर, हमारे वस्त्रों को इन्होंने लिया और हमारे साथ इन्होंने बात किया, इसी से वे बहुत सुखी थी, निर्वृत्त कार्य सुखी। तो ताह कुमार्य कृष्ण दृढ़म अत्यर्थम, तो वे कुमारियां कृष्ण के द्वारा दृढ़म प्रलब्धा यूयम विवस्त्रा इत्यादि न वंचिता। प्रलब्धा का अर्थ है उपहास करना, वंचित करना। भगवान ने ये कहा कि तुम लोग बिना वस्त्र के स्नान की हो, यह एक प्रकार का उपहास था, यह वंचना थी। भगवान ने उनका उपहास किया। प्रलब्धा त्रपया चहा पिता, और लज्जा से त्याजित किया, हापिता त्याजिता, यहां आकर के अपने वस्त्र ले लो, अत्रागत्य सौभांशांसि इति आग्रहेण त्याजिता। जब श्री कृष्ण ने ये कहा कि यहां आकर के वस्त्र लो, जब जल में स्नान कर रही थी तो उन्होंने उनकी लज्जा का त्याग करवा दिया, उपहास किया, वंचित किया और लज्जा छुड़ा दिया, प्रस्तोभिता, और कहे सत्यम ब्रुवाणी नो नर्म, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, इसमें उपहास है। उपहासिता प्रस्तोभिता, प्रस्तोभ का अर्थ उपहास, एक प्रकार से उन्होंने गोप कुमारियों की हंसी उड़ाया, उनकी लज्जा छुड़ाया, उन्हें वंचित किया। क्रीडनवच्च कारिता, और क्रीड़ा के उपकरण कठपुतली की तरह उनको नचा दिया। जब वो आ गई जल से बाहर तो उस समय कहते हैं कि हाथ जोड़ो और अंजलि बांध करके सिर पर रख करके देवता को नमस्कार करो, तो इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्रीड़नवत चकारिता। क्रीड़न कहते हैं खिलौने को, खास करके काठ की बनी हुई पुत्रिका को, पुतली को, कठपुतली की तरह नचा दे, जैसे कहे वैसे गोपियों ने किया। कारिता वस्त्राणी च अपहृतानी, इनके वस्त्रों को चुराए, अथापि तथापि अमुम न अभ्यसूयम, फिर भी गोप कुमारियों ने प्रियतम कृष्ण के प्रति दोष बुद्धि नहीं किया। एक प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं सब प्रकार से दोष बुद्धि करने का काम किए श्री कृष्ण, लेकिन दोष बुद्धि नहीं किया, बल्कि प्रियसंग निर्वृता, अपना वे अहो भाग्य मानती थी कि उनके समक्ष श्याम सुंदर कुछ उनसे बातें किए, इसी से वे आनंद में थे। प्रिय संग निर्वृत्ता, और लाभ की भावना कर रहे थे, हमको परम लाभ मिला है, हमारा व्रत सफल हुआ, हमें कृष्ण से मिलने का अवसर मिला, कृष्ण से बातचीत करने का, इससे वे बहुत सुखी थी। तो श्री कृष्ण के इन लीलाओं से, वस्त्र हरण से या प्रणाम करवाने से, किसी भी लीला से वे बहुत खुश थे, दोष बुद्धि नहीं की। अहो राजन पश्य गाढ़ प्रेम महात्म्यम, हे महाराज परीक्षित, आप जरा विचार कीजिए कितना बड़ा प्रेम है गोप कुमारियों का, कितना प्रेम है भगवान के प्रति, उनके प्रति किसी भी स्थिति में दोष बुद्धि नहीं किया उन लोगों ने, गोपियों ने दोष बुद्धि नहीं किया, सुखदेव गोस्वामी ने दोष बुद्धि नहीं किया, भगवान वेदव्यास देव ने दोष बुद्धि नहीं किया, और आजकल के मूर्ख लोग दोष बुद्धि करते हैं, कृष्ण क्यों वस्त्र हरण किए, जाकर पूछो कृष्ण से ना, ये सुखदेव गोस्वामी से पूछो, इनको कहना चाहिए मूर्ख कहेंगे, क्यों हरण किए तो इसको सुनने का प्रयास करना चाहिए ना, क्यों हरण किए। आजकल कृष्ण की इस लीला पर बहुत आक्षेप कर देते हैं कुछ लोग, कृष्ण ऐसे किए, कृष्ण वैसे किए, कृष्ण ऐसे किए। एक बार हमसे ट्रेन में एक व्यक्ति बहस करने लगा, हम कृष्ण को कैसे भगवान माने, नहाती हुई स्त्रियों का वस्त्र ले जाना, चुरा लेना, यही भगवान का काम है। तो मैं कहा कि वो वस्त्र चुरावे या वस्त्र दे, किसी भी हालत में वो भगवान है। तो उसने तो बहस करने लगा, तो मैं कहा कि अच्छा तुम आप सुने हैं कि कृष्ण ने करोड़ों मीटर वस्त्र भी किसी स्त्री का बढ़ाया था, द्रौपदी जी का, सुने हैं? तो वो कहता है हाँ सुने हैं, लेकिन हम उसको सत्य नहीं मानते। तो मैं कहता इसको भी सत्य मत मानो, तुम मानो ही मत। जब तुमको नहीं मानना है तो आधी बात को मानते हो, आधी बात को नहीं मानते हो, ये तो कोई उचित नहीं है। इसको कैसे तुम मानते हो कि गोप कुमारियों के वस्त्र को चुराया कृष्ण ने, ये लिखा है, तो वो भी तो लिखा है ना। कौरों की सभा में द्रौपदी जी को नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था और 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींच रहा है, वो गाज फेंक करके गिर गया लेकिन साड़ी का ओढ़ छोड़ नहीं मिला, तो वो भी श्री कृष्ण ने किया है ना। तो वही व्यक्ति जो करोड़ों मीटर वस्त्र बढ़ा दिया बिना कारखाना के किसी भी तरह, उसको क्या वस्त्र की जरूरत थी वो चुराया है, ये विचार क्यों नहीं करते? तो कहा नहीं मैं इसको नहीं मानता। तो मैंने कहा तो मैं तुमको नहीं मानता हूं, तुम चुपचाप बकवास बंद करो, नहीं मानती। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य में, ब्रह्मसूत्र के भाष्य में उन्होंने एक न्याय लिखा है, अर्ध कुकुट न्याय। कुकुट मुर्गा को, मुर्गी को कहते हैं, अर्ध मुर्गी न्याय इसको कहेंगे। एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी, शंकराचार्य जी लिखते हैं, तो वो मुर्गी अंडा देती थी, तो अंडा बेचता था, कभी कभी पाता खाता भी था। एक दिन उसके मन में ये बात आई कि मुर्गी का पिछला हिस्सा जहां से अंडा देती है ये बहुत उपादेय है, उपादेय में लाभकारी है, लेकिन अगला जो हिस्सा है गला मुंह ये बड़ा खर्चीला है, इसको खिलाना पड़ता है, मुर्गी को खिलाना पड़ता है, इसलिए एक काम करना चाहिए कि इसका अगला हिस्सा काट देना चाहिए, पिछला रहने देना चाहिए जिससे अंडा मिलता रहेगा। तो मूर्खता बस चाकू से मुर्गी का गला रेत दिया, तो जिस दिन गला कटा उसी दिन अब अंडा आना भी बंद हो गया। तो श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस तरह से शास्त्रों के एक अंश को कोई मानता है और दूसरे को नहीं मानता है तो वह अर्ध कुकुट न्याय से, अर्ध मुर्गी न्याय से वो अर्थ की प्राप्ति नहीं कर सकता है। यद्यपि अर्थ अंडा नहीं है लेकिन फिर भी अगर मुर्गी का अगला हिस्सा काट दिया जाए तो अंडा कैसे मिलेगा? जिस ग्रंथ में लिखा गया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराया, उसी ग्रंथ में लिखा गया है कि उन्होंने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, तो दोनों को मानना पड़ेगा ना, नहीं तो अर्ध कुकुट जैसा ऐसे मिथ्या ज्ञान ये उचित नहीं है। जिस ग्रंथ में भगवान को साक्षात भगवान के रूप में कहा गया है और उसी ग्रंथ में उनकी नर लीला का वर्णन, तो दोनों की संगति है ना, भगवान नर लीला कर रहे हैं, भगवान मनुष्य नाट्य प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण गोप कुमारियों के वस्त्र को चुराए और बहुत वंचित किए, बहुत वंचित, वंचित का अर्थ है धोखे की बात करना, वंचिता, और इसके साथ साथ उनकी लज्जा छुड़ाए, उनका उपहास किए कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, और यहां तक कि कठपुतली की तरह नचा दिए, जब अपने हाथों को नीचे करके और आ रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, हाथ जोड़ करके अंजलि पर, मूर्धना पर, सिर पर रखो और देवता से क्षमा मांगो, तब तुम्हारे व्रत की कमी पूरी खत्म होगी। तो इसको कहते हैं क्रीड़नवच्च कारिता, कठपुतली की तरह नचा दिए, जो कहा श्री कृष्ण ने वही की गोप कुमारियों ने, लेकिन फिर भी कभी भी दोष बुद्धि नहीं की। न अभ्यसूयम, असूया नहीं हुई। असूया का अर्थ है दोष निकालना, किसी में दोष निकालना। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम था अनसूया, किसी में दोष नहीं कभी निकाली थी, किसी की निंदा नहीं की, अनसूया। तो गोपियों ने श्री कृष्ण में कोई दोष नहीं देखा, बल्कि गुण देखा कि हमारा अहो भाग्य है कि प्रियतम हमारे पास आए, हमसे बात किए। अहो राजन पश्य गाढ़ प्रेम महात्म्यम। महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी ये कथा कह रहे हैं कि महाराज जरा विचार कीजिए, कितना प्रेम है, इतना नचा दिए जाने के बाद भी श्री कृष्ण के प्रति दोष बुद्धि नहीं हुई। श्री कृष्ण से मोहनत्वम इति वदन। और ये जरा विचार कीजिए, कृष्ण में कितना आकर्षण है, कितनी मोहन शक्ति है। क्रीड़नम क्रीड़ोपकरणम जंत्र पुत्रिकादि जतः प्रियस्य तस्य संगेन संगत्या एव निर्वृता जद्वा प्रिय संगेन निर्वृताश्च बभूव। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, तिरस्कुर्वतोपि स्वप्रियस्य आनुकूल्यम। इस तरह से तिरस्कार करने पर भी श्री गोप कुमारियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति अनुकूल ही कर रहे थे, अनुकूल ही बनी रहे। ताभी कृतम अन्यर दुष्करत्वा विस्मयेन अभिनंदति। अन्य किसी के द्वारा ये दुष्कर कर्म था, कृष्ण को इस तरह से समर्पण करना, उनकी बात मान लेना, किसी के लिए भी अशक्य था, लेकिन गोप कुमारियों ने इसको सत्य कर दिया, सार्थक किया। इस लीला से विस्मय हो गया सुखदेव गोस्वामी को और विस्मय पूर्वक अभिनंदन कर रहे हैं। ओहो, इतना त्याग किया कृष्ण के प्रति, इतनी प्रिय बुद्धि और कृष्ण में दोष बुद्धि नहीं, अहो विस्मय की बात है। दृढ़म अत्यर्थम प्रलब्धा वंचिता जुयम विवस्त्रा इत्यादिना त्रपया चहा पिता त्याजिता अत्रागत स्वभाषांस इति आग्रहेण प्रस्तोभिता उपहसिता सत्यम ब्रवाणी नो नर्म इत्यादिना क्रीडनम क्रीडोपकरणम जंत्र पुत्रिकादिवत कारिता कृता बद्वांजलि इत्यभि प्रायश्चित छले नाभ्यसूयन दोष दृष्ट्या न अपश्यन प्रियस्य तथा कृतवत्ती अपि प्रिय के द्वारा इस प्रकार से नचाई जाने के बाद भी उनके साहचर्य से ही ये सुखी थी। प्रिय कृतम दुख प्रदानम अपि सुखत्वे नैव अनुभवन्ते इति भाव। प्रिय के द्वारा दिए हुए इस दुख को भी वो सुख ही समझ रही थी। इस प्रकार भगवान ने वस्त्र हरण किया तो परिधाय स्वभाषांसी प्रेष्ठ संगम सज्जिता गृहित चीता नोचेलुस तस्मिन लज्जाई तेक्षला। भगवान ने जब इनके परिधान उत्तरीय सारे वस्त्रों को दे दिया तो उसको पहन करके सज करके श्री कृष्ण पर लजीली चितवन से देखने लगे और उस स्थान से कदम वृक्ष से नो चेलु नहीं चली, चली नहीं, एक पग भी नहीं चली, ब्रज की ओर नहीं चली, गांव की ओर, घर की ओर नहीं चली। स्वभाषांसी परिधाय, इसका अर्थ है निज निज वस्त्राणि तेन परिवर्त दत्तानी अपि परिचित्य अनुन्यम स्वीय वस्त्राणि। भगवान जब वस्त्र दे रहे थे उस समय भी उन्होंने उपहास किया, उन्होंने कहा अपना अपना वस्त्र पहन करके लो। तो कोई गोप कुमारी कहती थी हमारा वस्त्र ओ है, तो दूसरे का वस्त्र उठा करके श्री कृष्ण कहते थे ये है, ओ नहीं नहीं वो नहीं है, दूसरा है, तो भगवान उसको बदल करके तब वो देते थे। और कभी कभी क्या करते थे, कोई गोप कुमारी कहती थी ये हमारा वस्त्र है, तो दूसरा वस्त्र उठा लेते थे कृष्ण जानबूझ करके और उसको देते ठीक ये ले लो, तो भगवान के हाथ से वस्त्र मिल रहा था तो ले लेती थी, लेकिन फिर वो कहती नहीं ये मेरा वस्त्र नहीं, अच्छा ठीक है तो उसको दे दो, फिर दूसरा देते थे। इस तरह से देर कर रहे थे भगवान, अच्छा ये आपका वस्त्र नहीं है इसका वस्त्र है, इस तरह से भूल की लीला को परिवर्तन कर कर के दे रहे थे। तो इस प्रकार से जब वस्त्रों को भगवान ने दिया उसको पहन ली, तो पहन करके लज्जा ते सयाप गमे सती गृहित सीता, गोपियों की लज्जा तो चली ही गई थी, अब जब वस्त्र पहन लिया तो लज्जा का कोई प्रश्न नहीं था। पहन करके उदित भावा हो गए, इन सब लीलाओं से विशेष करके ये चीरहरण लीला से वे समझ गए कि प्रियतम हमें स्वीकार कर रहे हैं, ये उनको आश्वासन हो गया। यदि ऐसा नहीं होता तो आज पूर्णिमा के दिन व्रत समाप्ति के दिन कैसे यहां आ गए, और मानती थी कि माता दुर्गा जी ने हृदय में प्रेरित किया होगा कृपा करके आ गए। मनुष्य भाव में कभी कभी ऐसा सोचती थी कि माता दुर्गा जी का हम लोगों ने पूजन किया तो दुर्गा जी कृष्ण के हृदय में बैठ करके उनको प्रेरित करके हमारे पास लाई। तो पृष्ठ संगम सज्जिता, अपने प्रियतम के साथ होने पर ही वे बहुत सुखी थी। और पृष्ठ संगम सज्जिता, सज्जिता पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वासक सज्जा की तरह हो गई। वासक सज्जा उस नायिका को कहते हैं जो अपने देह का और घर का श्रृंगार करके अपने प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा करती है, अष्ट नायिका में एक वासक सज्जा। तो इस तरह से वासक सज्जा की तरह पहन करके तैयार हो गई एकांत में पानी ग्रहण के लिए। गोप कुमारियों का एक भाव था कि हमने व्रत किया है और अब वस्त्र हमें मिल ही गए, तो पानी ग्रहण के लिए अब वहीं पर रुक गई। जाना तो जाने की तो कल्पना ही नहीं थी, हम लोगों के मन में बसा रहता है कि आश्रम है यहां जाना है ये घर है काम धंधा है ये है वो है। गोप कुमारियों के लिए सब कल्पना में भी नहीं था कि हमारा ये है और हमको वो देखना है हमको ये देखना है, कृष्ण के अलावा उनका चित्त कहीं जाता ही नहीं था, इस तरह के वे अधिकार वाली थी। अतएव तस्मिन श्री कृष्ण लज्जा इतेक्षणा सलज्ज दृष्टि असत्य, श्री कृष्ण पर देख रही थी प्रेयसी भाव से और एक लजीली चितवन से, चितवन में दृष्टि में एक लज्जा थी, तो नो चेलु उस स्थान से नहीं हटी। पृष्ठस्य श्रीकृष्णस्य संगमेन आसज्जिता तस्मिन् एव आसक्ति कृता, पृष्ठ संगम सज्जिता का अर्थ है श्री कृष्ण में ही आसक्ता, आकृष्ट भगवत चित्ता। अतएव मिथो भाव विशेषोदयेन आश्वास वाक प्रसाद लाभेन वा सलज दृष्टि, अथवा एक भाव है कि रुकी रही आश्वास वाक के चाहती थी। श्री कृष्ण ने ये लीला किया सब कुछ किया, तो श्री कृष्ण अब कुछ बोले प्रियतम कुछ हमको कहें क्या कहते हैं, आश्वास वाक्य का ये मतलब है कि अब ये कहेंगे कि ठीक है हम एकांत में चलते हैं और हम पाणी ग्रहण करेंगे ये विवाह उत्सव रचाएंगे, ये आश्वास वाक्य का मतलब। ये प्रसाद लाभ के लिए सलज दृष्टि होकर के उस स्थान से नहीं चली, वहीं रह गई। पृष्ठस्य संगमेन सज्जिता तस्मिन् एव अत्यधिक मास से अधिक मास से चैत्रता यथा कृष्ण। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जिस तरह से श्री कृष्ण ने गोपियों के चित्त को हर लिया था, तो इसी तरह से गोप कुमारियों ने भी श्री कृष्ण के चित्त को हर लिया था। मय्यता परमा शक्ता भगवान ने स्वयं कहा है, और उनके लिए भी कहा गया है श्री कृष्ण गोप कुमारियों में आसक्त थे। तो श्री कृष्ण का प्रसाद, श्री कृष्ण का आश्वास वाक्य पाने के लिए वहां रुकी। और चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि पाणी ग्रहण के लिए रुकी। तो तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्यया धृत व्रतानाम संकल्पम आह दामोदरो बलह। भगवान दामोदर, दामोदर जो प्रेम के वश में माँ यशोदा के द्वारा उखल में भी बांध दिए गए थे, इतना भक्तों के प्रेम के वश में है, वही प्रभु ये देख लिए कि स्वपाद स्पर्श काम्यया स्वस्य पादयो स्पर्श पत्नी त्वेन भक्त्या अत्यंत सानिध्यम। भगवान ने देखा कि हमारी मेरी पत्नी बन करके और भक्ति से मेरे चरणों का स्पर्श चाहती हैं, विशेष करके चरण संवाहन करना चाहती, भगवान की सेवा करना चाहते। कृष्ण ने देखा कि हमारी पत्नी के भाव से हमारे चरणों की सेवा चाहती हैं, स्पर्श चाहती हैं, चरण स्पर्श। स्वपाद स्पर्श काम्यया, और उसी कामना से धृत व्रता नाम इन्होंने कात्यायनी व्रत किया। तो उन कुमारियों के संकल्प को अर्थात अपने चरण के सेवा की लालसा को, संकल्प को विज्ञाय विशेष रूप से ज्ञाय जान करके अबलह आह उन अबलाओं से भगवान बोले। फिर गोप कुमारियों को अबला क्यों कहा गया है, क्योंकि वे कन्या हैं और स्वतंत्रहीन है, वे स्वतंत्र नहीं है, अपने माता पिता के वश में है, समाज के वश में है, तो इसलिए उनको अबला सुखदेव गोस्वामी कह। उन अबलाओं से, गोप कन्याओं से भगवान ने इस तरह कहा। उनके संकल्प को जानते थे, कभी भी गोप कुमारियों ने भगवान से डायरेक्ट कुछ कहा नहीं था कि आप हमारे पति बन जाइए, हम आपको अपना पति मानती हैं और व्रत भी इसीलिए कर रही हैं। ऐसा गोप कुमारियों ने कभी भगवान से नहीं कहा था, लेकिन वे भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, भगवान दामोदर समझ गए उनके संकल्प को और प्रसन्न थे ही, तो उन्होंने इस प्रकार कहा। भो रसिक शेखर, पहले तो गोपियों ने कहा भगवान से कि हे रसिक शेखर, अस्माभिर व्रत फलम प्राप्तमेव जद असाधारणम विडंबनम त्वया कृतम तेनापि प्राणा न निर्यापिता। हम लोगों ने व्रत किया माता दुर्गा जी का और उसका फल स्वरूप आप हमें मिले, लेकिन आपने हमारी जो विडंबना किया उससे हमारे प्राण नहीं निकले, बल्कि आपकी लीलाओं से प्राण और संतुष्ट ही हुए हैं, या हम संतुष्ट हैं। पहले तो आपने जल से हमें निकाला और अनेक चातुर्य सृष्टि से हमारे सर्वांग का निरीक्षण किया आपने, हमारे नीचे के पहनने वाले वस्त्रों को अपने स्कंध पर धारण किया, हमने आपके प्रति कुछ भी नहीं कहा, फिर भी हम चाहती हैं कि आप हमसे कुछ बोलिए, हमको आश्वासन दीजिए, आप कब हमें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, कब हमारे साथ रहेंगे, कब हम आपके चरण कमलों की सेवा करेंगी। पादस्पर्श, वैसे पाद शब्द बड़े लोगों के सारे शरीर के लिए कहा जाता है, जैसे श्रीधर स्वामी को स्वामी पाद कहते हैं। प्रभु पाद का भी यही अर्थ है, प्रभु के समग्र शरीर को प्रभु पाद कहते हैं। पाद शब्द बड़े लोगों के सारे शरीर को चरण से ही कहा जाता है, ये नियम है। साधुओं से अगर पूछा जाता है कि आप कहां से आए, तो ऐसे नहीं पूछा जाता है कहां से आसन आया, कहां से श्री चरण आया, ऐसे पूछते हैं। ये शिष्टाचार की भाषा है। आसन कहां से आया, साधुओं से पूछते हैं। आसन से मतलब आप, आसन कहां से आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आसन भेज दिया गया बिल्टी और आप बाद में आए। आप कहां से आए, परंतु उसको ऐसे कहेंगे कहां से आसन आया, कहां से श्री चरण आया। तो श्री कृष्ण के स्पर्श की कामना, मतलब सब प्रकार से उनकी सेवा की लालसा गोपीजनों को थी और संकल्प था, और इसी के लिए उन्होंने व्रत किया था। तो भगवान इसको कह रहे हैं, संकल्पो विदितः साध्यो भवति नामदर्शनम्। सबसे पहले श्री कृष्ण संबोधन करें साधव्य साधव्य, हे परम प्रेम व्यवसाय गुण रूपवत्य साध्वी। भगवान के मुख से गोप कुमारियों के लिए साध्वी शब्द निकल रहा है। हे साध्वी या हे पतिव्रता शिरोमणि, यह बहुत सुंदर शब्द निकल रहा है। हे साध्वी, हे सदाचार शीला, भवती नाम मदर्चनम संकल्प मया विदित, आप लोगों के द्वारा अर्थात मदीय सुखोत्पादक मद विषयक आराधना में वह मुझे सुखी करने के लिए जो तुम लोगों ने संकल्प किया है। यहां आप देखिए ध्यान से, मद अर्चनम, मद अर्चनम संकल्प का विशेषण, मद अर्चनम संकल्प, मुझको प्रसन्न करने वाला, मुझको सुखी करने वाला जो तुम लोगों ने व्रत किया, संकल्प किया, मनोरथ किया, मया विदित, मैं इसको जान गया हूं। यद्यपि तुमने कभी विज्ञापन नहीं किया इसका मेरे प्रति, लेकिन मैं इसको जानता हूं कि मुझे सुखी करने के लिए तुम लोगों के मन में संकल्प है पत्नी बन करके, तो सह मया अनुमोदित, मैं इसका अनुमोदन करता हूं। भगवान के मुख से सुनना चाहती हैं, गोप कुमारियां तो श्री कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं, तो भगवान ने कहा कि हाँ मैं इसका अनुमोदन करता हूं। अनुमोदन करता हूं का अर्थ है मैं स्वीकार करता हूं, यह मुझे स्वीकार है, और यह संकल्प सत्य है। सत्य है, सत्य कहां यह अर्थ है सदा अव्यभिचारी है, यह सदा सत्य है, तीनों काल में सत्य है, और यह हो करके रहेगा। भवितुम अर्हति, सत्यम भवतिम अर्हति का यह अर्थ नहीं कि सत्य हो करके रहेगा, यह सदा सत्य है। हम तुम मेरी प्रिया हो, हम तुम्हारे प्रियतम हैं, यह तीनों काल में अबाधित सत्य है, और यह हो करके रहेगा। अर्हति एवं, ये होने योग्य है लेकिन होगा नहीं, ये भगवान ये एक एक बात कह रहे हैं। चाहती हो जिस रूप में, वे चाहते थे कि श्री कृष्ण विख्यात हो कि ये इनके पति हैं, तो इस रूप में श्री कृष्ण विख्यात नहीं होंगे। तुम हमारी प्रिया हो और हम तुम्हारे प्रियतम हैं, यह बात तो सत्य है तीनों काल में, और विवाह का संबंध चाहती हो, ये होने योग्य है लेकिन होगा नहीं। अर्थात परकिया भाव से भगवान बोल रहे हैं, इसी के लिए वे आए हैं अपनी नित्य प्रियाओं को लेकर के। समाज में ये प्रचार होगा कि ये गोपियां दूसरे की पत्नियां हैं, परंतु इन्होंने सारा धर्म लोक लाज सब कुछ छोड़ करके श्री कृष्ण से प्रेम किया है। इसी को इस लोक में जिसको परकिया भाव कहते हैं और आगानुगा भक्ति, इसके प्रचार के लिए भगवान आए थे। अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इस भाव के भक्तों को, तो वही कह रहे हैं कि इसका मैं अनुमोदन करता हूं। हमको सुखी करने वाला जो संकल्प तुम लोगों ने किया है, मुझे प्रियतम के रूप में स्वीकार करके सब तरह से मेरी सेवा का जो तुम्हारा संकल्प है यह सत्य है, अरे हो करके रहेगा। तुम लोक में दूसरे के द्वारा विवाहिता पत्नी हो करके भी सेवा मेरी ही करोगी, ये भाव है, मुझे ही सुखी करोगी। मुझको सुखी करने वाला तुमने जो संकल्प किया है यह वितरिकाल में सत्य है और ये होगा। भवितुम अर्हति, युज्यता है, वो बिल्कुल युक्त है। भो साधव्य भवती नाम मद अर्चनम एव संकल्प मनोरथ सच, तुम्हारा संकल्प क्या है? मद अर्चनम, मुझको सुखी करना। इस संसार में देखिए एक से एक साधक हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन उनके मन में संकल्प कृष्ण सेवा ही हो ऐसा है नहीं, बहुत कम लोगों के मन में है। कुछ ना कुछ ये हमको चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन श्री गोप कुमारियों के जीवन में क्या संकल्प था कि सर्वस्व त्याग करके कृष्ण के पास रहें और कृष्ण की सेवा करें, उन्हें चामर डुलावें, चरण संवाहन करें, उन्हें नृत्य दिखा करके, उनके साथ मान करके, या जैसे तैसे उनको सुखी करना है। श्री गोपियां अपने देह का श्रृंगार इसलिए करती थीं कि श्री कृष्ण देह करके सुखी हों, उनका शरीर, उनका मन, उनका प्राण, उनका धन, उनका सब कुछ केवल कृष्ण के लिए था। तो भगवान उसका कह रहे हैं कि हम अनुमोदन करते हैं, हमें बहुत खुशी है और हम प्रसन्न हैं कि तुमने हमें हमारे लिए ऐसा संकल्प किया है, और संकल्प ही नहीं किया है बल्कि व्रत भी किया है। माता दुर्गा जी का जो व्रत तुम लोगों ने किया है वास्तव में मदर्चन, वो मेरी ही पूजा है, यह भी एक प्रकार से उन्होंने कह दिया। क्योंकि जिसमें मन लगा था, जिसका कीर्तन गा रही थी, उसी की वो पूजा हुई। उनको विश्वास था कि माँ दुर्गा ऐसा करने से हमें वरदान देंगी और कृष्ण हमें पति रूप में मिलेंगे। तो पूजा के समय में भी वो केवल कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे और कृष्ण का गुणगान कर रहे थे। अतः माता दुर्गा की पूजा भी अंततः कृष्ण पूजा में प्रतिफलित हुई। भगवान स्वयं कर मदर्चनम, मेरी अर्चना, अथवा मदर्चनम संकल्प का अर्थ मुझे सुखी करने वाला संकल्प तुम लोगों ने किया जब से, मया विदित और मया स अस अनुमोदित, और मैं उसका अनुमोदन करता हूं। यह परम उत्तम संकल्प है और साध्वी करेंगे तुम रूप गुण आदि से पूर्ण साधु हो, साध्वी हो, और मद अपेक्षा एवेति भाव, और ऐसे साध्वी, ऐसे सुंदरी रूप गुण से संपन्न मेरे द्वारा तुम अपेक्षा हो, मैं तुम्हारी अपेक्षा करता हूं, मतलब मैं तुम्हें अपनी प्रिया मानता हूं। संकल्प में वह मम अर्चनम पत्नी त्वेन भक्त्या सेवनम, पत्नी बन करके मेरी सेवा करने का संकल्प जो तुम्हारा है, तद्रूप सत्य सुसिद्ध फलम, वो सुसिद्ध फल है सत्य। भो साधव्य भवती नाम मदर्चनम मदीय सुखोत्पादक मद विषयक आराधना में वह संकल्प मनोरथ सच लज्जा जिसमें भी कथितोपि मया विदित। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि मुझे सुखी करने वाला जो संकल्प तुम्हारे मन में हुआ है, कृष्ण को सुखी करना है, कृष्ण को सुखी करना है, ये जो मनोरथ जीवन में तुम्हारे बना हुआ है और लज्जा के कारण तुम लोगों ने हमसे कभी कहा नहीं, फिर भी मया विदित, फिर भी मेरे द्वारा वो विदित है और अनुमोदितश्च निकैतवत्वात् सत्यश्च, यही संकल्प वास्तव में सत्य संकल्प है। किसी जीव के हृदय में कृष्ण को सुखी करने का जो संकल्प हो यही सत्य संकल्प है, और बाकी और संकल्प झूठे हैं, व्यभिचारी संकल्प हैं। सत्य संकल्प यह और यह सत्य होगा, यह सत्य है और यह होगा। भवितुम का अर्थ है यह एग्जिस्टेंस में आएगा, ऐसा होगा। एक प्रश्न होता है, यदि भगवान कहें कि हमारे प्रति जो संकल्प किया जाता है, जो लालसा की जाती है, वो सत्य है, यही सत्य संकल्प है, तो प्रश्न उठता है कि आखिर गोपियों गोप कुमारियों के मन में तो ये कामना उठी, लेकिन कामना तो एक बाधक है। कोई किसी प्रकार की इच्छा होना एक श्रेयस्क जीवन में बाधक है। तो भगवान कहते हैं, न मैया वसिध्यम कामः कामाय कल्पते। मेरे प्रति जो कोई संकल्प करता है, कामना करता है, मुझसे संबंधित, मुझसे कुछ मांगता है या मेरी सेवा करना चाहता है कुछ भी, तो वह फिर अन्य बंधन पैदा नहीं करता है, अन्य विषयांतर काम उपभोग पैदा नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो कामना की जाती है, तो कामना इतना परफेक्ट है और इतना मधुर है कि उस काम के अलावा, कृष्ण सेवा के काम के अलावा और कोई काम का उदय हो ही नहीं सकता है। जैसे भूंजा हुआ अनाज और क्वथित उबाला हुआ अनाज दूसरा बीज पैदा नहीं कर सकता, इस तरह से मेरे प्रति जो कामना होती है, संकल्प होता है, वह दूसरे फिर भोग में डालता नहीं है। मैया वैसिद्धियम कामह कामाय न कल्पते। मुझमें जिनका चित्त आविष्ट है, मई आवेशित धिया, जिनकी बुद्धि मुझ में आविष्ट है, उनका काम कामाय न कल्पते। इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बीज है, जौ या गेहूं, तो जब तक उसको भूंजा नहीं गया है या पानी में उबाला नहीं गया है, तब तक उसको रोपने पर बीज पैदा होगा दूसरा। तो इस तरह से मनुष्य के जीवन में जो अन्य कामनाएं हैं कृष्ण के अलावा, कृष्ण के अलावा जो कामना है दूसरे से पूर्ति कराना चाहता है, तो वह कामना अन्य अनेक कामनाओं को जन्म देती है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। एक कामना के बाद अनेक कामनाएं, एक कामनाएं, एक कामनाएं, एक कामनाएं। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए इस संसार में कोई स्त्री है, विवाह करती है किसी पुरुष से, उसका काम है, उसकी कामना है कि हमको सुख मिले या उसको सुख मिले, परंतु विवाह के बाद भी उनकी अनंत हजारों कामनाएं जन्म लेती हैं, हजारों कामनाएं। इसका मतलब उसमें सुख स्वरूप नहीं है, वो कामना जो पहली थी सुख स्वरूप अपने में नहीं है, उन दोनों से और कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और कामनाएं उत्पन्न होती हैं, ये मिले वो मिले मिले। तो काम जो है वो अग्नि है, वो दुख का, यही संस्पर्जा होगा, दुख योनिया ये बात, दुख की योनिया है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे प्रति जो काम है वो दुख उत्पन्न नहीं करता है, वो अपने आप में वस्तु सद्गुण से, मैं चूंकि चिन्मय हूं और जीव का अपना प्रिय हूं, मेरे प्रति जो काम किया जाता है, लालसा की जाती है, कामना की जाती है, तो अपने आप में परमानंद स्वरूप, सुख स्वरूप है, इसलिए अन्य कामना का उदय नहीं होता है। भक्त पूर्ण संतुष्ट हो जाता है मुझसे। जैसे मान लीजिए कोई गेहूं का दाना है, उसको भूंजा गया, भूंज दिया गया, और भूंज करके फिर क्वथिता, उसे भूंज करके और फिर गुड़ में या चीनी में उसको पकाया जाए, तो अपने आप में इतना वो मधुर होगा, घी में भूंज करके और फिर पकाया जाए रस में, गुड़ में, मधु आदि डाल करके, तो अगर पकाया जाए तो अपने आप में इतना मीठा होगा कि उसके अलावा वो जो बीज है गेहूं का, वो अन्य बीज पैदा नहीं कर पाएगा। अब आप समझ रहे हैं इस बात को, भगवान कह रहे हैं कि अगर उस बीज को जो भूंज दिया गया, फ्राई किया गया, घी में, और फिर पागा गया सीरा में, तो इतना मधुर होगा कि उसके अलावा उससे ये कामना नहीं होगी कि इसको बो करके दूसरा गेहूं प्राप्त करे। नहीं, भगवान श्री कृष्ण इतना आनंदमय है, इतना सुखमय चिन्मय है कि उनके प्रति जो काम होता है, जो इच्छा होती है, तो दूसरे काम को जन्म नहीं दे पाती है। वैसे न मैया विशिधियम काम कामाय कल्पते, भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते, निश्यते या नेशते, समर्थ नहीं होता है। तो श्री कृष्ण के प्रति तो कामना करके देखना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कृष्ण से कामना करता है, यहां तक गोप कुमारियों में से किसी किसी को ये कामना थी कि श्री कृष्ण से हमें सुख मिले, वो ऋषि स्वरूप है, यहां पर नहीं, ये जो चीर हरण हुआ है इसमें नहीं, लेकिन कुछ ऋषि लोग बने थे गोपी, तो उनके भीतर एक कामना थी, श्री कृष्ण के सौंदर्य पर वे लुब्ध थे कि श्री कृष्ण हमें प्रिय के रूप में मिले, प्रियतम के रूप में मिले, और श्री कृष्ण का हम स्पर्श करें, श्री कृष्ण से हमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो, जिसको कहेंगे कृष्ण विषय काम। परंतु यह काम भी अन्य काम को जन्म नहीं दे सकता है। कृष्ण के प्रति जो कामना होती है, तो कामना विचार काल में भी, सोचने के समय में भी इतना आनंदमय है वस्तु सद्गुण से कृष्ण के कारण, कामना भी आनंद देती है, और काम की जो पूर्ति है तो इतना आनंद है कि अब उसके अलावा अन्य कोई कामना उत्पन्न नहीं हो सकती। भगवान ये कह रहे हैं, इसलिए मेरे प्रति किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहिए। जिन के न प्रकार मन कृष्ण निवेश, नारद जी राजस्वीय सभा में कहते हैं कि जिन के न प्रकार जैसे भी हो कृष्ण में मन को लगाना चाहिए, जैसे भी। कोई कोई लोग द्वेष से कृष्ण में मन लगा दिए, जैसे चैद्य आदि राजा, शिषपाल आदि राजा, ये लोग कृष्ण से द्रोह करने में कृष्ण में मन लगाए रखे, लेकिन वे आनंदमय हो गए, क्योंकि कृष्ण आनंद घन है। ऐसा उदाहरण दिया गया है कि स्वाति का बूंद यदि दैव जोग से सीपी में गिरता है, समुद्र के सीपी में, तो वो मोती बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का जल अगर सीपी में गिरे, सीपी क्या, सीपी एक जीव के रहने का स्थान माना जाता है, सीपी कहते हैं, या शंख है, सीपी है, तो उसमें अगर वो बूंद गिरता है तो मोती बन जाता है। और वह जल यदि कमल के पत्ते पर गिरता है तो कमल जैसा चमकने लगता है, रहता है जल ही लेकिन चमकता है, मोती जैसा चमकता है। और हाथी के सिर पर अगर गिरे तो गजमुक्ता बन जाता है, वही जल। और वह ये जल यदि तप्त लोहे पर गिरे, लाल लाल लोहे पर, तो थन से जल करके अपनी सत्ता भी खो देता है, कुछ नहीं रहता। तो इसको वस्तु सद्गुण कहते हैं, किस वस्तु में हमारा चित्त जा रहा है। यदि श्री कृष्ण में चित्त जाता है तो वह काम जो बंधन कारक है, अनेक कामनाएं पैदा करता है, भोग की कामनाएं पैदा करता है, वो कामनाएं ही समाप्त हो जाती है, वो श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है भक्त, उसका चित्त परम आनंद में मग्न हो जाता है। अतः मुझमें जिनका चित्त आविष्ट है, साधारण लोगों का, उनका काम काम के लिए नहीं होता है, बल्कि वे अपनी सत्ता ही खो देता है, वह परम मधुर बन जाता है। यहां पर ही अर्थ हुआ है, धाना शब्द का अर्थ है भ्रष्ट जव। आशीर्वादी करता पहले से ही जो भ्रष्ट जव है, जिसमें उत्पादन की क्षमता नहीं है, उसको धाना, धान का अर्थ है, हम लोगों के जैसे क्षेत्र में प्रयुक्त होता है धान माने चावल, ये अर्थ नहीं है संस्कृत में। धान मतलब जौ, गेहूं आदि, ये सब धान ही है। भ्रष्ट जवा, भ्रष्ट जब है उसको फिर भूंज दिया जाए, फिर उसको पाग दिया जाए, तो कहां से फिर दूसरी कामना पैदा करेगा, दूसरा काम पैदा करेगा। इस पर बहुत बड़ा लेख लिखा है श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने। तो भगवान ने कहा, जाता बला ब्रजम सिद्धा मये मारंस्यथ क्षपहा जद उद्दिश्य व्रतमिमं चेरुरार्जार्चनम सति। अतः हे अबला, जुयम सिद्धा, व्रत करके तुम लोग क्षीण हुई हो, पूर्ण मनोरथा हो गई, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, तुम सिद्ध हो गई। अतः ब्रजम जाता, तुम अपने गांव जाओ, अपने घर जाओ, ब्रज में जाओ। ब्रजम जात गच्छत मया सह इमाहा, मेरे साथ तुम्हारा इन रात्रियों में, छपा माने रात्रि, इन रात्रियों में, आगामिनी शारदी रात्रियों में रंस्यथ विहार करोगी, रास विहार होगा। आगामी इमा शब्द भगवान कह रहे हैं आश्वासन के लिए कि बस अब क्या है, तो आने ही वाली है रात्रियां। यह एक भाषा है, गोइल माघ 29 दिन बाकी, जैसे इधर कहते हैं एक दिन माघ चला गया 30 दिन में, तो बताओ तो चला गया गोइल माघ 29 दिन बाकी, अब तो 29 दिन ही बाकी है तो चला गया। भगवान भी इसी तरह से बोल रहे हैं, इमा इमा का अर्थ है ये छपा, अब इन रात्रियों में, अब क्या है, साल भर के अंदर ही आने वाली है। भगवान अगहन के महीने में ये बात बोल रहे हैं, पूर्णिमा को पूछ ही समझिए, 10 महीना और रह गया, 10 महीना भी नहीं। छपा शरद की रात्रियां आश्विन और कार्तिक, और अश्विन कार्तिक अगहन 3 महीना पूरा हो चुका है, 9 महीना रह गया। केवल एक महीने के व्रत से साक्षात भगवान जिनको मिल गए, और इतना सुंदर आश्वासन दे रहे हैं कि आगामी शरद काल की छपाओं में, रात्रियों में मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा, रास विहार होगा। कितने आनंद की बात, एक महीने की साधना से भगवान प्राप्त हो। वास्तव में तो नित्य ही प्राप्त हो, नित्य ही प्रिया है, लेकिन बाहर रूप से देखा जाए तो एक महीने के व्रत का यह फल है। तो तुम लोग जाओ, और जिसके लिए हे सतियों, भगवान सत्य शब्द का प्रयोग कर, सती गोप कुमारियों के लिए परम पतिव्रता कह रहे सती, तुम लोगों ने जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए, जद उद्देश्य, जिस उद्देश्य से, इदम आर्जार चनम, ये जो आर्जा, आर्जा मतलब कात्यायनी दुर्गा जी की अर्चना की है, जिस उद्देश्य से तुम लोगों ने दुर्गा जी की आराधना की है, व्रत किया है, वह संकल्प तुम्हारा पूरा होगा। आगामी शरद काल की रात्रियों में मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा। अतएव जात, इसलिए तुम जाओ, छपा व्याप रंस्यथ, शरद काल की रात्रियों में मेरे साथ तुम्हारा रास विहार होगा, तुम क्रीड़ा करोगी, सुख विशेष पाओगी और मुझे सुखी करोगी। भगवान ये वरदान दे रहे हैं, सबसे बड़ा सुख जो भगवान ने दिया गोपियों को वो था रास विहार। उद्धव जी ने कहा है कि जो प्रसाद भगवान ने गोप सुंदरियों को दिया, उनके कंठ में हाथ डाल करके नाचे उनके साथ, जो सुख गोप सुंदरियों को मिला वो सुख स्वयं लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला है, फिर स्वर्ग में रहने वाली अन्य देवांगनाओं को या पृथ्वी की स्त्रियों को कहां से मिल सकता है। भगवान ने सबसे बड़ा सुख दिया, उसी की तरफ संकेत करते हैं कि तुम्हें सुख विशेष मिलेगा। नायम श्रीयोंग उन्नितंत रते प्रसादम इति उद्धव वचन प्रामाण्यतः लक्ष्मीतोपि प्रसाद विशेष लब्ध्या तब अधिकम इति दर्शितम्। तत्र च इमा छपा इति अनेन अचिरात तत्सिद्धिश्च सूचिता। ये रात्रियां कह करके भगवान अचिरात उसकी सिद्धि कह रहे हैं, अथवा अरहति इति मयासौ किम साधितव्य तस्यैव तत्राखंड परमानंद प्राप्तो स्वतः एव योग्यता इति परम सद्गुण निधेर विनयान्वितः ननु काम सुख से कथम एवं भूतत्वम तस्याम एकांतिकत्वाद इत्यासंख्या नेति उसको। इस प्रकार जब श्री भगवान ने उस शुभ समय का भी संकेत कर दिया कि आगामी शरद काल की रात्रियों में मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा, तब सुखदेव गोस्वामी भी प्रसन्न होकर के ये कथा कह रहे हैं। इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामः कुमारिकः ध्यायन्तस्तत्पदाम्भोजं कृष्णा निर्विविसुरव्रजम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवता श्री कृष्णेन इति आदिष्टा, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह गोपियों को संकेत दिया, आदेश दिया, तो लब्ध कामः गोप कुमारियों का मनोरथ पूरा हो गया और वे भगवान श्री कृष्ण के चरणम भोज का ध्यान करती हुई बड़े कष्ट से ब्रज में गई, जमुना तट से बड़े कष्ट में ब्रज में गई। उस समय श्री कृष्ण का चरण देख देखकर ध्यान कर रही थी, चूंकि श्री कृष्ण ऊपर थे कदम वृक्ष पर, तो बहुत बार गोप कुमारियों को भगवान का चरण देखने का अवसर मिलता था, चरण चिन्ह नीचे के, और समय में इतना चरण चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन श्री कृष्ण के चरण में ध्वज वज्र अंकुश आदि स्वस्तिक आदि के चिन्ह है, उनको बार बार देखी थी। तो जब प्रियतम ने आग्रह किया नहीं तुम घर जाओ, आगामी शरद काल में हमारा तुम्हारा मिलन होगा, विहार होगा, तो बड़े ही कष्ट से वे गई, जाना चाहती नहीं थी लेकिन प्रियतम चाहते थे इसलिए गई। तो कृष्ण ध्यायन तस् तत्पदाम भोजम, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करती हुई गई, अथवा पदाम भोज शब्द से उनके समग्र शरीर का है, उनका चिंतन करती हुई, मन तो वहीं रह गया वे शरीर से केवल गई, ये भाव है, मन कृष्ण में ही था और शरीर से वे ब्रज में गई। ब्रजम निर्विविशु, ब्रज में प्रवेश की, ये अर्थ है, ब्रज में प्रवेश की, बहुत कठिनाई से वे गई ब्रज में प्रवेश की। यहां तक श्री गोप कुमारियों के साथ भगवान की चीरहरण की लीला पूरी हुई। अब भगवान जमुना के तट से अपने सखाओं के साथ चलेंगे तो वे वृक्षों की प्रशंसा करेंगे, ये कल कथा होगी सवेरे के सिटिंग में। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।